SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन SBS ऑडियो ऐप SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी
नमस्कार मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई माइग्रेशन के बारे में हाल ही में न्यू साउथ वेल्स ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-2025 के माइग्रेशन प्रोग्राम को आवेदकों के लिए जारी कर दिया है यानी खोल दिया है यानी जो लोग राज्य में परमानेंट रेजिडेंसी पाना चाहते हैं वे वीजा पाने से जुड़ी कार्यविधि को शुरू कर सकते हैं तो राज्य के इस वित्तीय वर्ष के नए नियम और नए बदलाव कौन से हैं इसी सिलसिले में आज हम जुड़ रहे हैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नेहा सिंह से SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा
थैंक यू नताशा
तो नेहा इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 2025 के न्यू साउथ वेल्स माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं
देखो नताशा न्यू साउथ वेल्स ने थोड़ा लेट अनाउंस किया अपना रिक्वायरमेंट्स वो कल ही परसों ओपन हुए हैं काफी देर से लोगों को इंतजार था कि न्यू साउथ वेल्स अपनी फाइनेंशियल अपनी जो स्टेट नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट्स है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अनाउंस करेगा तो फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो बहुत अच्छी चीज उनके लिए ये रही है कि उन्होंने जो 491 था रीजनल प्रोविजनल वीजा उसमें तीन पाथवेज अनाउंस किए हैं इस बार फर्स्ट पाथवे उनका जो लोग रीजनल में काम कर रहे थे किसी एम्प्लॉयर रीजनल एम्प्लॉयर के साथ उनके लिए है पाथवे टू उन लोगों के लिए है जो रीजनल में रह रहे हैं ठीक है और उनका ऑक्यूपेशन अवेलेबल है बट वो उनको स्टेट इनवाइट करेगा एंड थर्ड पाथवे जो उन्होंने नया इस साल इंट्रोड्यूस किया है वो ग्रेजुएट रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने वहीं रहकर न्यू साउथ वेल्स रीजनल में से ही पढ़ाई करी है उन लोगों के लिए ये पाथवे ओपन किया है सो विच इज अ वेरी गुड पाथवे जो लोग वहां रीजनल में न्यू साउथ वेल्स में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो गई है टू बी एप्लीकेबल फॉर द स्टेट नॉमिनेशन 19 रिक्वायरमेंट्स उनकी ज्यादा चेंज नहीं हुई है उन्होंने बोला है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन उनकी न्यू साउथ वेल्स की जो 190 की स्किल लिस्ट में अगर आपका ऑक्यूपेशन उस एनको कोड में फॉल करता है और आप पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो या इफ यू आर एन ऑफशोर एप्लीकेंट और आप पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली ऑफशोर हो तो आप 190 के लिए एलिजिबल हो यू कैन अप्लाई एंड वेट फॉर द नॉमिनेशन प्री इन्विटेशन तो यस न्यू साउथ वेल्स ने कुछ अच्छी चीजें भी इंट्रोड्यूस की है उन्होंने बट 19491 के लिए अपनी इंडिविजुअल स्किल लिस्ट 190 की और रीजनल स्किल लिस्ट 491 के लिए इंट्रोड्यूस कर दी है हाँ देखो न्यू साउथ वेल्स सिर्फ एप्लीकेंट जो वहाँ न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं या ऑफशोर एप्लीकेंट्स है वही है इंटरस्टेट एप्लीकेंट्स के लिए न्यू साउथ वेल्स ओपन नहीं है यस, जो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं स्टेट के वो ही अप्लाई कर सकेंगे, सारे नहीं कर पाएंगे।
अच्छा नेहा, हर राज्य अपने क्षेत्र के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन प्रोग्राम में उन ऑक्यूपेशंस को शामिल करता है, तो न्यू साउथ वेल्स ने ऐसी कोई लिस्ट, ऐसे कोई क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं?
जस्ट बताया कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सेक्टर, ठीक है, उनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर उनके लिए बहुत प्रायोरिटी का है। शेयर इकोनॉमी, डिजिटल एंड साइबर इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज वेरी इन प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द स्टेट। एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स उन्होंने इस बार फिक्स किए हैं अपने, क्योंकि उनके कुछ टारगेट सेक्टर्स है और उनके कुछ क्रिटिकल जो स्किल्स उनके जिनकी शॉर्टेज हो रही है स्टेट में, उनके लिए उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर सेट कर दिए न्यू साउथ वेल्स में। सो उनकी लिस्ट भी उस प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंगली उन्होंने बनाई है। अगर आप देखो तो 194/91 में कुछ हॉस्पिटैलिटी के जो कि बहुत कॉमन ऑक्यूपेशन थे, अकाउंटेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, कुक्स शेफ्स भी नहीं है, तो यस उन्होंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज सेट की है जिसके अकॉर्डिंगली वो इन्विटेशन देंगे, सबको नहीं देंगे।
Hey, podcast listeners, tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
अच्छा, इस साल राज्य सरकार ने एक नई डायरेक्ट एप्लीकेशन पाथवे रीसेंट ग्रेजुएट्स जो कुछ रीजनल इंस्टीट्यूशंस में राज्य में पढ़ रहे हैं उनके लिए घोषित की है, थोड़ा उसको हमें विस्तार से बताइए कि वो क्या है।
हाँ जी, जो पाथवे 3 है 491 का, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स फॉर रीजनल न्यू साउथ वेल्स है, जो लोगों ने अपनी स्टडीज जो बैचलर्स और हायर डिग्रीज में कंप्लीट की है, नॉट ऑल बट बैचलर्स और हायर डिग्रीज, जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स रीजनल इंस्टीट्यूशंस में से करी है, वो रीसेंट ग्रेजुएट्स में काउंट होंगे, ठीक है। उनकी जो स्टडीज है वो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन से भी क्लोजली रिलेटेड नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, और रीसेंट ग्रेजुएट्स वो उनको काउंट करेंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों में from the date of applying for the New South Wales nomination, उनकी पिछले 2 सालों में studies complete हुई होनी चाहिए। So one of the good options for people जो उन्होंने वहाँ से study करी है, उनके लिए ये option अच्छा रहेगा recent graduate का। So yes, this is a good option, but यहाँ पर भी New South Wales की regional skill list आपको check करने पड़ेगी कि आपका occupation उस list में fall हो रहा है to be eligible for pathway 3 for New South Wales।
अच्छा जी, यानी कि हर एक ग्रेजुएट जो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है वो एलिजिबल नहीं भी हो सकता है?
हाँ, जिन्होंने वेट सेक्टर में किया, मतलब बैचलर्स से नीचे की करी है, वो एलिजिबल नहीं होगा। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि बैचलर्स डिग्री और अबव वाले एलिजिबल होंगे।
जी, और किसी प्रकार का कंसेशन राज्य सरकार ने घोषित किया अपने माइग्रेशन प्रोग्राम में?
न्यू साउथ वेल्स ने एक टिस्मेट इनकम इंट्रोड्यूस करी है इस बार
जी।
तो पाथवे 1 में 491 के लिए जो लोग रीजनल किसी एम्प्लॉयर के साथ अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, तो वो एलिजिबल है पाथवे 1 के अंदर। इसमें कोई स्किल लिस्ट फॉलो नहीं होगी न्यू साउथ वेल्स के तरफ से जो मेंशन की गई है, कोई भी ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकता है, बट उन्होंने बोला है कि 6 महीने तुमने काम करा होना चाहिए एक ही एम्प्लॉयर के साथ जो कि रीजनल में एस्टेब्लिश्ड है, और आप टिस्मेट इनकम लेते होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब टिस्मेट इनकम जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंगली दैट इज 73,150
जी जी
ठीक है. बट उसमें कुछ कंसेशन भी उन्होंने अलाउ किए, 90% कंसेशन, 10% कंसेशन ऑन द टिस्मेट इनकम. बट वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन उस कंसेशन टिस्मेट इनकम की लिस्ट में फॉल करता है कि नहीं करता है. और उस इसमें क्या करना है, अगर आप एलिजिबल है तो आपके खुद के एम्प्लॉयर को पहले कंसेशन के लिए टिस्मेट इनकम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रूवल लेकर रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन फॉर द स्टेट.
जी नेहा, आपके अनुसार न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेशन प्रोग्राम का जो इस वित्त वर्ष जारी किया गया, वो क्या अब और मुश्किल बना दिया गया है या आसान बना दिया गया है?
देखो, न्यू साउथ वेल्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमेशा से रही हैं. ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी अगर पहले से ईओआईज है, आपने अप्लाई कर रखी है, तो वो उनको भी कंसीडर करेंगे. प्लस उन्होंने पहले क्या होता था कि वो आपका अगर क्लेम कर रहे हो आप अपना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो वो डीम्ड डेट से काउंट करते थे आपकी जो स्किल असेसमेंट की आपकी डीम्ड डेट है. बट नाउ दे हैव सेड कि आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, they will count post study experience would be, you will be able to claim that experience in your expression of interest. So ye bhi ek naya change raha hai New South Wales ke criteria mein, which is one of the good changes which they have introduced. Kyunki logon ko confusion rehta tha pehle ki hum apna experience kab se claim karna shuru kare. So this is one of the good changes which is coming up with New South Wales.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आज हमसे जुड़ने का और हमें न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में ये जानकारी देने का.
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर. आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.